ओम शांति। किस चीज के पात्र हैं हम सभी? आया नहीं उत्तर। बाबा ने क्या कहा पहली लाइन? मीठे बच्चे हो तो पुरानी बात होगी, नहीं बताओ मुझे। परमात्म प्यार के पात्र हैं, इसका मतलब बताओ। सहज बातें हैं, आप तो ऐसे गंभीर हो गए जैसे बड़ा फिलोसॉफी का पेपर देना हो। इसका अर्थ, हम भगवान के प्यार पाने के पात्र अधिकारी। भगवान किसे प्यार करता है? चलो सोचो। माताएं उछालो अपना कलश, बंद करके रख दिया है। बाप को दुखियों की आवाज, पुकार, आहें बहुत सुनाई देती है। पता नहीं अभी भी याद नहीं है तो क्या याद किया मुरली से? पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं सुनती। कौन है हम? बोलो बोलो, खुल गया बोलो। हाँ, थोड़ा खुलने लगा, खोलो भाई। आप सभी बहने इष्ट देवियां हैं, आजकल सबसे ज्यादा पुकार रहे हैं देवियों को, शक्तियों को, दुर्गा काली। भाई भी हैं इष्ट देव, लेकिन पूर्वज बहुत अच्छा टाइटल है। हमें गुड फीलिंग हो, हम पूर्वज हैं। पूर्वज माना, बोलो सिंपल मीनिंग पूर्वज का, बड़े, जैसे परिवार का बड़ा, दादे परदादे, उससे भी बड़े दादे। तो इसलिए ब्रह्मा को क्या कह दिया? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, सबसे ऊपर, पहला। हम भी पहले हैं सृष्टि में, पहले पहले आए। एक से दो हुए, दो से चार, वृक्ष बना, पूरा कल्प वृक्ष बना दो अपना। हम उन सबके पूर्वज हैं। कितनी आत्माओं के कनेक्शन में आए होंगे, लाख हो गई होंगी। एक अपना परिवार, उनके उनके कितना फैलाव होता है एक परिवार का। हम उन सबके पूर्वज हैं। क्या होगा पूर्वजों का? मैं थोड़ा सीधा नहीं पूछा है। पूर्वजों के वाइब्रेशंस, पूर्वजों की स्थिति, पूर्वजों की प्योरिटी, योग, सबका प्रभाव उनकी वंशावली तक जाएगा। जैसे घर में माँ दुखी हो तो बच्चे खुश होंगे, प्रभाव आएगा। इवन आपके घर में बिल्ली भी है ना, वो भी दुखी होके कोने में बैठी होगी। देख लेना किसी के घर में बिल्ली हो। भारत में तो नहीं रखते, विदेशों में तो हर घरों में बिल्लियां, कुत्ते कुर्सी और खाटों पे वे बैठे रहते हैं। आदमी तो होते नहीं, सबके डिवोर्स हो जाते हैं। बिल्ली भी बिल्कुल शोक में बैठी होगी जब आपके घर में, और खुशहाली होगी तो चूहे भी उछल कूद कर रहे होंगे, भोजन खाने भी आ गए होंगे और उछल कूद भी करेंगे। जिसके घर में खुशहाली है, उसके आंगन में उगे हुए फल फूल पौधे मुस्कुराएंगे, खिलेंगे। और जिसके घर में गम है, मुरझाएंगे। मैं एक जगह गया, बहुत पहले की बात है, पौधे लगे हुए थे फूलों के, गेंदे के, गुलाब के, लेकिन सारे के फूल सूखे हुए थे। मैं समझ गया गड़बड़ है अंदर। मैंने कहा क्या बात है भाई, फूल मुरझाए हैं, अंदर के फूल भी मुरझाए होंगे। कोई उत्तर न दे, मैं समझ गया, साइलेंट उत्तर था ना, मुरझाए हैं। तो हम सभी पूर्वज हैं। इस गुड फीलिंग में आ जाएं। पूर्वज अलबेले नहीं हो सकते, पूर्वज बच्चों की तरह नहीं खेल सकते, पूर्वज माना जिम्मेदार। ऐसा संकल्प कर ले, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। बनाओ चित्र, हमारे एक एक संकल्प की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, एक एक पत्ते को हरा भरा कर रही हैं। जड़े हैं हम, जड़े मजबूत सारा वृक्ष मजबूत, हम फाउंडेशन हैं, तने भी हैं, तना सत्युता और अब है फाउंडेशन जड़े। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सभी बहुत ध्यान देंगे। अगर पूर्वज रोएंगे, बोलो आगे, बाबा ने कल कहा ना, तुम ही खुश नहीं होंगे तो सबका क्या हाल होगा। सब कहेंगे इन्हें भगवान मिल गया, यही सुखी नहीं है तो हमारा क्या हाल होगा, सोचेंगे ना। इसलिए भगवान के बच्चों को अपने चेहरों से अपना वही स्वरूप जो हमारा असली स्वरूप है दिखाना चाहिए। दूसरी बात पर आ जाओ, बोलो किसको क्या अच्छा लगा है। मुरली तो प्योरिटी पर बड़ी गहरी थी, प्योरिटी पे क्लास कराएंगे तो थोड़ी उदासी आती है लोगों को, फिर भी मैं कराऊंगा ताकि आपका जीवन सदा खिला रहे। हम जानते हैं हम चलते चलते संपूर्ण इम्प्योरिटी में आ गए, तम प्रधान हो गए, किसी का दोष नहीं है, चक्र की गति ही ऐसी है। अब कोई सोचे रात के 12-1 बजे गहन अंधेरा क्यों हो रहा है, उठेगा प्रश्न, वो है ही अंधेरे का समय। तो कल्प पूरा हो रहा है, लेकिन इस पूरे होने के साथ एक चीज और हो रही है, वो शुरू हो रही है, उसका सबको ज्ञान होना चाहिए। चक्र चलते चलते वहीं पहुंच रहा है जहां से चला था, बिल्कुल समीप आ गया। अब सुई वहां नहीं है जहां पहले दिखाई थी, बिल्कुल नजदीक आ गई है। इसलिए सभी के मूल संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, समझते नहीं, इमर्ज जग रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह सब जान लें, उन्हें हमें जगाना है, इमर्ज करना है। और इमर्ज होंगे किससे, मैं आपको एक ही बात याद दिला रहा हूं बस, अपने पहले देव स्वरूप को सामने लाया करें। ऐसे थे हम और अगला जन्म यही तो है, 5000 साल पहले थे तो सोचेंगे 5000 तो बड़ी लंबी कहानी है 5000 साल की, अगला कदम यही है। संपूर्ण निर्विकारी, देखो देवताओं के चेहरे, पहले देवताओं के चेहरे देखो, ये हम थे हम हैं। इसको स्मृति में लाएंगे तो प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी। याद रखना सभी को, केवल माताओं की बात नहीं, हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, आपका साथी आपको संपूर्ण सहयोग देगा। अच्छी तरह समझ लें इस बात को, आप इस देवी बनेंगी, साथी आप ही सम्मान करेगा, अपने जीवन को बदलेंगे, परिवार वालों का सम्मान मिलेगा। बच्चे नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, स्वमान में नहीं रहते। स्वमान में स्थित हो जाएं, बच्चे आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे। ऐसे हजारों उदाहरण है हमारे पास जिन माताओं की या भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी है, पूरा परिवार जैसे स्वर्ग है, तीर्थ है, सब सुखी है, आज्ञाकारी है, सबके काम धंधे अच्छे हैं। स्थिति पर अभी एक परिवार मिला मुझे, अभी यहाँ आने से 5 मिनट पहले कहा, हम सिंधी हैं, पति ज्ञान में नहीं चलता। पति को कहते हैं बाबा सिंधी था तो कुछ तो लाज रखो, ज्ञान में चलो। अब वो, मैंने कहा अब बाबा सिंधी था इसका मतलब थोड़े सारे सिंधी आ जाएंगे, लेकिन उनको बड़ी उमंग। कहा बच्चे ये इस पोस्ट पर, ये इस पोस्ट पर, मैं भी बहुत सुखी। देखो पति नहीं भी चलता, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी होने से बच्चों को फर्स्ट क्लास जॉब, पैसे की कोई कमी नहीं, और पति भी सोचता भी है तीनों एक तरफ हो गए, मैं क्या करूंगा भाई, चलो मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, बहुत चीजें ठीक हो गई। स्थिति का खेल बहुत जबरदस्त है, वाइब्रेशंस का प्रभाव उसको कोई समझता ही नहीं, बहुत जबरदस्त है। इससे ही समझ लें कि देवी के मंदिर में जाकर अगर पापी लोग भी निर्मल हो जाते हैं वो तो जड़ मूर्ति है, उसमें तो केवल प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, तो थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस हैं, हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस फुल स्वीकार करो। एक अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, एक अपने पूज्य स्वरूप को, आपकी प्योरिटी बढ़ जाएगी, आपका प्योर प्रभा मंडल ओरा आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। और आने वाले समय में पवित्र आत्माओं को अपनी पवित्रता का चमत्कार दिखाई देगा, खुद को पता चलेगा कि हम तो ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे, युद्ध है ना माया से, पर ये प्योरिटी कितनी जबरदस्त चीज है। जब प्रकृति पवित्र आत्माओं का सम्मान करेगी, विनाश काल में सबका सम्मान नहीं करेगी, सबको तो नष्ट करेगी, लेकिन पवित्र आत्माओं का सम्मान करेगी और उस सम्मान में सब कुछ प्रदान करेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, चाय की आदत है तो चाय भी मिलेगी, और जो वैसे हैं उनको पानी भी नहीं मिलेगा, आपको दवाई चाहिए तो दवाई भी मिलेगी, बाकी सब ढूंढते रहेंगे सारे शहर में, नींद की गोली नहीं मिलेगी, अब सोए कैसे, यह हाल होने जा रहा है संसार का, डरने की बात नहीं, लेकिन हमारी प्योरिटी की वैल्यू हमें स्वयं होनी चाहिए। और सुना दूं एक अनुभव, कल ही नीचे शांतिवन में दो बुजुर्ग बहनें मिलने आई, तो बुजुर्गों को नॉर्मली माता जी कहते ही हैं हम, हमें तो ऐसी आदत पड़ी, छोटी माताओं को माता कह देते हैं, बेचारी लज्जा करती हैं। मैंने उन दोनों को कहा माता जी ठीक हैं, कहा हम माताएं नहीं हैं, हम दोनों कन्याएं हैं, आयु होगी 70 साल। मैंने कहा क्यों कन्याएं रही हो, मैरिज नहीं की? नहीं, पहले से ही पवित्र जीवन अच्छा लगता था। फिर अपनी कुछ समस्याएं सुनाने लगी, अब उन सब की समस्याओं का, उन दोनों की समस्याओं का एक ही समाधान था, वो मैंने उन्हें कहा अब तुम पवित्र आत्माएं हो जिन्होंने विकारों को जीत लिया, जिनमें इच्छा ही नहीं थी विकारी जीवन की, ये छोटी बात है क्या, बोलो भाई लोग बोलो। मैंने कहा अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने देवत्व को समझो, वो हाँ ऐसे कई मिलते हैं मुझे, पहले से हमें शादी की इच्छा ही नहीं थी, हमें जीवन अच्छा ही नहीं लगता था, नफरत थी, पारसियों में तो बहुत है, पारसियों में तो पवित्र रहना ब्रह्मचर्य में रहना एक कॉमन प्रथा है, जनसंख्या उनकी 1 लाख रह गई बेचारों की, हमारे पास ज्ञान में है ना बहुत, एक बड़ा ऑफिसर डायरेक्टर रहे हैं वो इसका एग्रीकल्चर का, आते रहते सेवा में आता है, बहुत जेंटिल है, मुझे बताता है। मैंने कहा तो आपके जो नेता हैं गुरु हैं वो सोचते नहीं कि हम तो नष्ट हो जाएंगे, कहा नहीं कोई कुछ नहीं सोचता, जिसको पवित्र रहना है रहो, कोई बंधन नहीं है। तो देखो एक छोटा सा धर्म जिसकी आबादी केवल 1 लाख है सारे भारत में, उसमें भी प्योरिटी का बल, हिंदू धर्म जो सबसे बड़ा रहा है उन्होंने छोड़ दी, थोड़ी छोड़ दिया नहीं बोल नहीं रहे, अच्छी तरह छोड़ दी, आओ तुम बोल रहे महेंद्र, बिल्कुल अच्छी तरह छोड़ दी, सबने विदेशी कल्चर अपना ली है। मैं तो बहुत पहले कहा करता था क्लासेज में, अब से 35-40 साल पहले जब विदेशी हमारे यहाँ आने लगे और वो कहते थे रूस अमेरिका आपने क्यों दिखाया, अमेरिका वाले बोलते थे रूस दिखा दिया आपने, हमारा देश विनाश करेगा, सोचते हैं ना लोग। मैं उन्हें एक ही बात कहता था, अगर तुम्हारा देश विनाश न भी करे एटम बम से, तो ये जो काम वासना बढ़ी है तुम्हारे देशों में, ये सबको जलाकर वैसे विनाश कर देगी, एटम बम की जरूरत ही नहीं रहेगी। यही रहस्य है सृष्टि के। तो मैंने उन दोनों बहनों को कहा, अपनी शक्तियों को पहचानो, जिसने काम को जीत लिया उसके लिए ये समस्या नथिंग, तुम इन्हें समस्या मान रही हो, ये समस्या है नहीं। यही बात आप सबको कह रहा हूं, अपनी प्योरिटी अपनाइए, चलो थोड़ी अपनाई, पर महान है सभी। समझते हैं भाई लोग, निराश नहीं होना है कि थोड़ी प्योरिटी है, ये होता है वो होता है, बाबा की तो मुरली अति गहन है ना ये, क्योंकि बाबा संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं हमें। किसी के अंदर ईर्ष्या है उससे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मैंपन है उससे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। दो शब्द बोले बाबा ने कल, कौन से? अभिमान और अपमान की फीलिंग है उससे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अभिमानी व्यक्ति को तो फटाफट संकल्प चलेंगे ना, आप गए हैं उसके पास, वो आपके पास आया और आप खड़े न हुए हो, संकल्प शुरू, देखा मैं बड़ा आदमी, मुझे देखते खड़े भी नहीं हुए, शुरू हो गई, क्यों शुरू हो गई। और कितने सुंदर शब्द भगवान के, बताओ क्यों के बारे में छोटे लाल, तुम ही बताओगे। नहीं कुछ और था, क्यों और पूरा बोलो, आधा बोला। तुम्हारे सामने वर्षा लेने वालों की क्यों लगेगी? अभी नहीं लगती, क्योंकि तुम खुद व्यर्थ की क्यों में, क्यों माना लाइन, खड़े हो। क्या क्यों की क्यों में खड़े हो। भगवान के शब्द भी सुंदर है ना। अब आपको, हम सबको देखना है कि व्यर्थ संकल्पों का कारण क्या है। बाबा की पीछे मुरली में आ चुका है, आपने ध्यान दिया हो, एक मास पहले अव्यक्त मुरली संडे की, आलस और अलबेलापन भी है पवित्रता है। पवित्र आत्माएं आलसी हो ही नहीं सकते, पवित्र आत्माएं केयरलेस रहे, अलबेले होए, होगा ही नहीं। ये दोनों इम्प्योरिटी हैं, सूक्ष्म इम्प्योरिटी अंदर है, उसका ये बाह्य रूप है। तो चेक करना है क्यों ये व्यर्थ संकल्प इम्प्योरिटी में गिने जाते हैं, क्योंकि इन व्यर्थ संकल्पों से हमारी पवित्रता का तेज नष्ट होता रहता है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर संकल्प ढीले ढाले हैं तो तेज नष्ट, चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी, लोग कहेंगे तुमने क्या खो दिया है। कल ऐसा ही एक कुमार आया था, परसों, बहुत अच्छा पवित्र, लेकिन चेहरा उदास। मैंने कहा क्या हुआ? माँ बाप बहुत तंग करते हैं घर में, बचपन से ही तंग करते हैं, हम उनकी लड़ाई देखते आए हैं दोनों की, फिर हमसे भी लड़ने लगे। माँ बाप को पता होना चाहिए, सब माता पिता बैठे हैं ना, आपका घर में थोड़ा भी संघर्ष आपके बच्चों के जीवन को उदासीनता में ले जाता है। बहुत युवक कन्याएं डिप्रेशन की ओर जा रही हैं, बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सब ध्यान देंगे, बच्चे कैसे भी हो सकते हैं, कलयुग का एंड है, देवता तो नहीं होंगे, लेकिन अपने को घर का माहौल बहुत अच्छा बनाकर उनके अंदर भी देवत्व है उसे जगाना है। इसलिए माँ को विशेष, माँ को या बाप को, माता ठीक बोल रही है। मुझे एक घटना याद आ गई, मैं वो प्राय सुनाया करता हूँ, कई लोग आते हैं युगल, एक की कहानी मुझे अच्छी लगती है वो मैं सुनाया करता हूँ। बैठे आते ही मैं तो किचन में जाना था, मुझे कहा भाई जी हम बहुत लड़ते हैं दोनों, थोड़ा टाइम दे दो। तो बैठते ही कहा बहन जी ने, मैंने कहा क्यों, तुम तो संबुद्धिमान लग रहे हो, क्या काम करते हो? हम दोनों ही लेक्चरार हैं। कितने पढ़े लिखे हो? दोनों ने एम ए एम फिल किया है। एक इकोनॉमिक्स की और एक शायद आर्ट के किसी सब्जेक्ट की थी। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम दोनों में बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देखें। मैंने कहा दोनों ही हो, मैं समझ गया। बुद्धिमानों का ही तो झगड़ा है आपस में, सीधे साधे लोग कहाँ झगड़ते हैं बेचारे। फिर मैंने कहा तुम दोनों में से अच्छा सोच के बताओ समझदार कौन है? तो जैसे माताओं ने उत्तर दिया ना, उस बहन ने भी कहा मैं। मैंने उसको अप्रिशिएट किया। ये सत्य है कि माताओं को ही ज्यादा समझदार होना चाहिए। मैं भाइयों का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य यही है, होना चाहिए कह रहा हूं मैं। तो मैंने उसे कहा बस आप झुक कर चलना। डिबेट होती है ना, खाने पे ही होने लगी, आज दाल बनाऊंगी मूंग की। पति कहता है नहीं उड़द की बनाओ, इस पे झगड़ रहे। अरे भाई दाल तो अच्छी बन जाएगी, तुम्हारा मन तब तक बिगड़ जाएगा तो दाल टेस्टी भी टेस्टी नहीं लगेगी। छोटी बातों में बहस हो रही है, तुम मुझे क्यों टोकते हो? वो कहेगा मैं घर का मालिक हूं, वो कहेगी मैं भी तो मालिक हूं, लड़ाई शुरू। बातें कुछ नहीं होती, जिनके घर में लड़ाई होती है यही कारण है ना, माताएं सिर झुकाओ नहीं, ठीक ठीक बताओ, यही है। अगर डिबेट बंद हो जाए, बहस बंद हो जाए, एक झुकना सीख ले, तो आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर सुंदर इफेक्ट होगा। आप उनके टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, बोलना नहीं है। तो बहन ने कहा मैं समझदार हूं, बस मैंने कहा तुम झुक के चलना। सम्मान देना दूसरों को तुम्हारा कर्तव्य है। आजकल पढ़ाई में क्या हो रहा है, दोनों अच्छे पढ़े लिखे इसलिए शादियां टूट रही हैं। कई गुजरी होंगी माता इन चीजों से, बच्चों की शादियां टूट रही हैं, करोड़ों केस पहुंच गए कोर्ट में, चलते ही नहीं है। और न चलने का एक ही कारण है, हायर एजुकेशन। देखो बुरी चीज का अच्छा कारण, डिवोर्स बहुत बुरी चीज है, दो के जीवन पर भारी अटैक है, आत्मघात, जिसको ये सचमुच आत्मघात है, आत्मा का घात होता नहीं पर यहाँ आत्मा का घात हो जाता है। कितने डिप्रेशन में जाती हैं लड़के लड़कियां, जी संसार में अकेली हो जाती हैं, माँ बाप पर क्या बीतती है, घर में वापस आती हैं सुनसान होता है या नहीं? और कारण हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या कर रही है? ईगो, अहम। इसे जो व्यक्ति अपने अहम को समाप्त कर ले उसका जीवन सुखी। झुक के तो चलना ही पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं? भाई भी झुकेंगे? भाई तो थोड़ा सा तन के ही रहते हैं, बताओ पिछले वाले भाई यूं झुक के चलेंगे? नहीं तो माताएं कहती है हमसे ही पूछते रहते हो। चलते हैं, वेरी गुड आंसर, चलते हैं। बस जो झुक के चले वही महान। झुक कर ही तो बच्चे को उठा देती है ना गोद में, या खड़ा खड़ा? झुकेंगे सबको उठा लेंगे, सबका कल्याण कर लेंगे। अकड़े रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए अकड़ के नहीं रहना है, झुक के चलना है। सॉफ्ट स्वीट इंग्लिश में शब्द है फ्लेक्सिबल, बहुत लचीले, फ्लेक्सिबल। देखो लचीलों का क्या होता है, पेड़ की टहनियां लचीली हो, तेज तूफान चल रहा हो झूलती रहेंगी, टूटेंगी नहीं, और तना और टहनियां सूखी कड़क हो टूट के गिर जाएंगी। हमें टूटना नहीं है, हमें झूलना है, आनंद में झूलना है, खुशियों में झूलना है। ये सब प्योरिटी हो गई, ठीक है? पसंद है बहनों को, भाइयों को? झुक के चले, फ्लेक्सिबल, लचीले, मोल्ड होने वाले, समय पर अपने को मोल्ड कर लेना, अपना रास्ता बदल लेना, ये समझदारी है। बदलते हैं ना हम सब रास्ता, बाइक चलाते हैं भाई लोग बहुत, छोटा सा भी गड्ढा आया बचा के चलते हैं ना। अपने को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। ये हमारी बहुत सुंदर प्योरिटी हो जाएगी। तो बहुत खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, जबरदस्ती कि भगवान ने कहा खुश रहना, खुश रहेंगे, जबरदस्ती होगा। तुम तो बहुत खुश हो, कैसे रहते हो? काली जैकेट वाले बोलो कैसे खुश रहते हो? चेहरा ही खुश है। कईयों के चेहरे ही ऐसे होते हैं कि खुश रहे भी तो भी चेहरा खुश नुमा नहीं लगता। बताओ अपनी खुशी का राज, बोलो ना, एक लाइन बोल दो। मुस्कुराना सहज काम थोड़ा ही है, मुस्कुराओ, अच्छी बात है, मुस्कुराओ, समस्याएं भगाओ, मनुष्य आधा हल्का हो जाता है, अपना ही फायदा है। खुशी एक वाइब्रेशन सी ऐसी फैलाती है कि बातों की समस्याएं कम हो जाती हैं, उससे सोच पावरफुल हो जाता है, सुख देने की भावना, बहुत अच्छी बात है ये। संतुष्ट रहना, ये सब खुशी के रहस्य हैं। उमंग उत्साह बढ़ाना, उमंग उत्साह में रहना, तो ये सब हम सबको बहुत आ गया ही है। मैं नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन बाबा तो चाहता है ना खुशी संसार में फैल जाए, हमारी खुशी अपने तक न रहे, हमारी खुशी परिवार तक न रहे, संसार में फैल जाए। तो और भी ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें लिखा करें। मुरली जो रोज सुनते हैं उनको ये करना चाहिए कि रोज की मुरली से एक दो बात ही जो हमें खुशी देती है, उमंग बढ़ाती है, नशा देती है, अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, वो अलग लिख लेनी चाहिए। आजकल तो छोटी छोटी डायरियां बिक रही हैं ना, चार चार इंच वाली, छह छह इंच वाली, एक एक पॉइंट एक एक पेज पे लिख दो मोटे अक्षरों में, लिखना थोड़ा साफ साफ, ऐसे नहीं कि खुद भी सोचते रहें क्या लिखा था। कईयों का हैंडराइटिंग ऐसा होता है खुद भी समझ में नहीं आता कि ये बाबा ने कहा क्या था। ये नहीं कहेंगे हमने लिखा क्या था, दोष भगवान का। तो थोड़े अच्छे धीरे धीरे अच्छे सजा सजा के अच्छे अक्षरों में लिखना, सुंदर हैंडराइटिंग भी सुंदर व्यक्तित्व की पहचान है। तो खुशी के पॉइंट लिखना, बाबा की साकार मूल्यों बहुत आती हैं। बच्चे सोचो किसके सामने बैठे हो, एक ही बात काफी होती है ना, तुम्हें कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है। साकार में जब बाबा थे, ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे रात्रि क्लास में, तो बहुत नशा चढ़ाते थे। मैं एक बात सुनाया करता हूं ना, ब्रह्मा बाबा का नशा था वो। बच्चे भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, सोचो, सोच लो भगवान मुट्ठी में, क्या करेंगे। भाग्य विधाता मुट्ठी में आ गया है, खुशियों का भंडार मुट्ठी में है। तो ये स्मृतियां हमें, खुशी से बड़ी चीज है आनंद, सबसे बड़ी प्राप्ति है जीवन की, सबसे बड़ी अनुभूति परम आनंद, खुशी से भी बड़ी। जहां खुशी, नशा और आत्मभिमानी स्थिति तीनों मिल जाएं, वो स्थिति आनंदकारी हो जाती है। तो हम इस परम आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखा करें। एक सुंदर बात अनेक व्यर्थ की बातों को नष्ट करेगी। आपको याद आ गया भगवान पढ़ाने आया है, कितने संकल्प शांत हो जाएंगे दस मिनट के लिए, एक ही नशा चढ़ा रहेगा। भगवान हथेली पर स्वर्ग लेकर आ गया है, क्या सोचा था क्या हो गया। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, ये मजा आ जाता है, क्या सोचा था क्या हो गया। सोचा इतना था एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, बस काम हो जाए। और यहाँ दर्शन तो छोड़ो, क्या क्या हो गया बोलो, हो गया ना बहुत कुछ। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह वो हमारे समीप आएगा। मैं एक चीज और सोचा करता हूँ, आज भी सोच रहा था, एक गीत है भक्ति का, श्री कृष्ण के लिए गाए वो तो, पर बाबा का जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत वंडरफुल है। वो किस से क्या करा बैठे, हम सोचते हैं ये तो बड़ी भोली सी माता, ये क्या करेगी, कल उसको साक्षात्कार मूर्त बना के खड़ा कर दे, जो भी देखे देवी देखे, ये सब उसके हाथ में है। गीत है ना, तेरी लीला परंपार, कुछ है उसका किसी ने न पाया पार, तेरी लीला माया तू ही जाने, ऐसा कुछ भक्ति में गीत है। कभी कभी बजता है, हम सुन लेते हैं। मैंने कहा ये बात भक्तों ने गाई तो सच है, तेरी लीला का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सचमुच बाबा का इस संसार को बदलने की जो लीला है ना पार्ट, बहुत वंडरफुल है। न जाने किस किस से क्या क्या काम करा रहा है वो, हमारी तो दृष्टि सीमित है ना, बंधी हुई, हमें तो पता भी नहीं चलता वो क्या क्या करा रहा है, ऊपर से ही पता चलेगा। तो हम सभी अपने चारों स्वरूपों को इमर्ज करें, कौन कौन से, दयालु, अब तो बोलो, कृपालु, बोलो, सुखदेव, सुखदेवा और दुख हरता। अभी एक सुंदर प्रयोग सभी करेंगे, जो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्होंने, उन्हें तो शुरू कर देना है, आपके घरों में पहुंच कर करेंगे। कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आता है, अब बहुत आया करेंगे आगे आगे, बाबा ने कहा ना दुख अशांति बढ़ती जा रही है और दिनों दिन बढ़नी ही है, और हम सब देख रहे हैं कि हाल बुरा होता जा रहा है, कोई दवाई नहीं उसकी, बस बाबा का ज्ञान उसका योग ही दवाई है। तो क्या अभ्यास करेंगे, कोई भी दुखी आत्मा आती है उसका दुख सुनने के साथ अपनी इस स्मृति को नहीं भूलेंगे, मैं दुख हरता हूँ, मैं इस देवी दुख हरने वाली हूँ। करेंगी सभी बहने अभ्यास, ध्यान से सुन लेंगे तो आपका वो जो स्वरूप है जागृत हो जाएगा। ऐसा ना हो उनका दुख सुनते सुनते खुद भी रोने लगे, हाँ बहुत दुख है तुम्हें, मुझे भी है थोड़ा थोड़ा, ये नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनका दुख सुनते सुनते अपनी दुखों की बातें याद करने लगती हैं, हाँ मेरे साथ भी यही हुआ, ये नहीं। अब इस देवियों को इससे बाहर आना है, दुख सुना रहा है कोई, सुनते सुनते अपने स्वरूप को जागृत करो, मैं इस देवी दुख हरता हूं, और फिर अभ्यास करना, मस्तक से किरणें निकल कर पड़ने लगी उसके ऊपर, उसके दुखों को समाप्त करने लगी, कर देना आधा मिनट 20 सेकंड, जो करेंगे उनको सुंदर अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। पसंद है महेंद्र भाई, तुम्हें भी करना, सब करेंगे, बोलो भाई लोग करेंगे, दूसरों के दुख वही हर सकेंगे जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे होंगे। बहुत ध्यान देंगे, दूसरों के दुख हरता वही बन सकेंगे जो, बोलो, जिन्होंने अपने भंडारे सुखों से भरपूर किए होंगे, जिनके पास सुखों का खजाना भरपूर है, जो सुखों के भंडार बन गए, बस वही संकल्प करेंगे, दृष्टि देंगे, यहाँ से वाइब्रेशंस जाएंगे और दूसरी आत्माएं दुखों से मुक्त होने लगेंगी। शुरू कर दो ये, क्योंकि आने वाले समय में इस सेवा की बहुत जरूरत होगी। बाबा तो कहता है तुम्हें दुखों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती, पर आजकल तो बोल के ही दुख बहुत सुनाते हैं, अपना पुकार सुनने की भी जरूरत नहीं। वैसे मेरे पास तो इतने आते हैं, मैं सोचू मैं पुकार क्या सुनूंगा, ये तो आवाज ही सुनने में बहुत आती है दुखों की। तो उसमें हम ये प्रयोग करेंगे सभी, और जनरल रूप से ये अभ्यास करेंगे, आज भी करके सोना और कल सवेरे मधुवन के इन सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस में ये अभ्यास करना, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान। मास्टर दुख करता सुख करता हूं, ये फीलिंग बहुत अच्छी तरह देनी है अपने को, हल्की नहीं, रटेंगे नहीं। मैं हूं वो इस देवी हूं जिसके दर्शनों से ही दुख दूर हो जाते हैं, मैं वो महान आत्मा हूं जिसकी दृष्टि पड़ते ही दूसरे सुखी हो जाते हैं, फिर बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चार ओर फैल रही हैं, संसार में जो दुख बढ़ा हुआ उसको कम कर रही हैं। संकल्प कर देना, क्योंकि हमारी ये शक्तियों की किरणें उसी तरह काम करेंगी जो हम संकल्प करेंगे। हम संकल्प करें ये शक्तियों की किरणें सभी को भय से मुक्त करें तो भय मुक्त करेंगी। हम संकल्प करें ये शक्तियों की किरणें सभी को दुखों से मुक्त करें तो दुखों से मुक्त करेंगी। जैसा संकल्प वैसा इनका स्वरूप होगा। तो ये अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा, पवित्रता को बढ़ाएंगे और पुकार बिना सुने ही सबके दुख हर देंगे, हम बहुत सुखी हो जाएं। छोटी बातों में दुखी ना हो ये ध्यान रखना है। अभी ग्लोब के ऊपर बैठकर योग करेंगे और संसार में शक्तियों की तरंगे फैलाएंगे।
जी।